Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Kunja Bihari Gopi Chana Vallabha Girivara Dhari Gopi Chana Vallabha Girivara Dhari Gopichana Vallabha Yashoda Nandana Vraja Janaranjana Yashoda Nandana Yashoda Nandana Vraja Janaranjana Yashoda Nandana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Yamuna Tira
श्रीमद्भागवताम की समवेत गौरव भक्त की नित ताई गौर प्रेमानंदे ओ नमो भगवते वासुदेवाय नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिके हरे कृष्णा। तो ग्रंथ श्रीमद् भागवतम स्कंद 2 अध्याय 9 श्लोक संख्या 34 ऋतेर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनिः तद्विद्यादात्मनो माया यथा भासो यथा तमः ऋतेर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनिः तद्विद्यादात्मनो माया यथा भासो यथा तमः ऋतेर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनिः तद्विद्यादात्मनो माया यथा भासो यथा तमः अर्थे रहित अर्थां सार प्रति यत् जो प्रति एक प्रतीत होता है ना नहीं प्रति एता प्रतीत होता है च तथा आत्मनि मेरे प्रसंग में तत् वह विद्यात् तुम्हें जानना चाहिए आत्मनः मेरी माया माया यथा जिस तरह आभास प्रतिबिंब यथा जिस प्रकार तमः अंधकार। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा पतित पावन श्रील प्रभुपाद की इच्छा है। अनुवाद हे ब्रह्मा जो भी सार युक्त प्रतीत होता है यदि वो मुझसे संबंधित नहीं है तो उसमें कोई वास्तविकता नहीं है इसे मेरी माया जानो इसे ऐसा प्रतिबिंब मानो जो अंधकार में प्रकट होता है। तात्पर्य तात्पर्य बहुत लंबा है कल की तरह फिर भी हम पढ़ लेते हैं। पिछले श्लोक में यह निष्कर्ष प्राप्त हो चुका है कि विश्व प्राकृत्य की कोई भी अवस्था इसकी उत्पत्ति पालन विकास विभिन्न शक्तियों की अन्योन्य क्रिया है इसका क्षय तथा सम्मान सभी भगवान के अस्तित्व से संबंध है। अतः जब भी भगवान के साथ इस मूल संबंध को विस्मृत कर दिया जाता है और वस्तुओं को भगवान से संबंध के बिना सत्य मान लिया जाता है तो इस धारणा को भगवान की माया का फल समझना चाहिए क्योंकि भगवान के बिना किसी भी वस्तु का अस्तित्व नहीं हो सकता इसलिए माया भी भगवान की एक शक्ति है। प्रत्येक वस्तु को भगवान से संबंधित करना योग माया कहलाता है और भगवान से विलग करने की भ्रांत धारणा भगवान की दैवी माया या महामाया कहलाती है। दोनों प्रकार की माया का भगवान से संबंध रहता है क्योंकि उनके संबंध के बिना किसी वस्तु का अस्तित्व नहीं रह सकता। इस प्रकार भगवान से संबंध विच्छेद की भ्रांत धारणा असत्य नहीं वरना भ्रमपूर्ण है। किसी वस्तु को दूसरी वस्तु समझना भ्रम है। उदाहरणार्थ रस्सी को सांप मान लेना भ्रम है, किंतु रस्सी असत्य नहीं है। रस्सी भ्रमग्रस्त व्यक्ति के समक्ष होने से असत्य नहीं है। हाँ, इसको सर मान लेना भ्रम पूर्ण है। अतः भौतिक अस्तित्व के विषय में भ्रांत धारणा भगवान की शक्ति से त्यक्त हो चुकने पर भ्रम है, किंतु असत्य नहीं है। यह भ्रांत धारणा ही अविद्या के अंधकार में सत्य का प्रतिबिंब कहलाती है। कोई भी वस्तु जो मेरी शक्ति से उत्पन्न नहीं लगती है वो माया है। जीवात्मा को रूप विहीन मानना या परमेश्वर के निराकार होने की धारणा की भ्रम धारणा भी भ्रम है। भगवत गीता में भगवान ने युद्ध भूमि में स्थित होकर कहा है कि हे अर्जुन, अर्जुन के समक्ष खड़े योद्धा तथा भगवान स्वयं इसके पूर्व भी विद्यमान थे। वे कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में भी विद्यमान है और भविष्य में भी। वर्तमान देह के विनष्ट हो जाने पर और भवबंधन से छुटकारा पा लेने पर भी इसी रूप में विद्यमान रहेंगे। समस्त अवस्थाओं में भगवान तथा जीवात्माएं अपने अस्तित्व बनाए रखती हैं और इन दोनों के साकार रूप कभी नष्ट नहीं होते। केवल माया का प्रभाव जो अंधकार है प्रत्यक्ष के प्रतिबिंब स्वरूप है, भगवत कृपा से दूर हो सकता है। भौतिक जगत में सूर्य का प्रकाश भी स्वतंत्र नहीं है, नहीं चंद्रमा का प्रकाश। प्रकाश का असली स्रोत तो ब्रह्म ज्योति है जो भगवान के दिव्य शरीर से प्रकाश को उद्भूत करती है और यही प्रकाश अनेक प्रकार के प्रकाशों में प्रतिबिंबित होता है। तथा सूर्य प्रकाश, चंद्रमा प्रकाश, अग्नि का प्रकाश, बिजली का प्रकाश तथा परमात्मा से असंबद्ध होकर आत्मा की सत्ता भी ब्रह्म है और मैं ब्रह्म हूँ, ये झूठा दावा उसी माया का अर्थात भगवान की बहिरंगा शक्ति का अंतिम जाल होता है। वेदांत सूत्र प्रारंभ में पुष्टि करता है कि प्रत्येक वस्तु परमेश्वर से उत्पन्न है। अतः समस्त जीवात्माएं परम पुरुष भगवान की शक्ति से उत्पन्न है, जैसा कि पिछले श्लोक में कहा जा चुका है। ब्रह्मा स्वयं भगवान की शक्ति से उत्पन्न है और अन्य समस्त जीवात्माएं भी ब्रह्मा के माध्यम से भगवान की ही शक्ति से उत्पन्न है। भगवान से संबंधित हुए बिना किसी का कोई अस्तित्व नहीं होता। प्रत्येक जीवात्मा की स्वतंत्रता वास्तविक स्वतंत्रता नहीं है, अभी तो परम पुरुष भगवान में निहित वास्तविक स्वतंत्रता का प्रतिबिंब मात्र होती है। बद्ध जीवों द्वारा परम स्वतंत्रता का झूठा दावा भ्रामी है, इस सत्य को इस श्लोक में स्वीकारा गया है। अल्पज्ञानी पुरुष भ्रमग्रस्त हो जाते हैं, इसलिए तथाकथित विज्ञानी, शरीर विज्ञानी, चिंतक इत्यादि सूर्य, चंद्र, बिजली आदि के अभायुक्त प्रतिबिंब से चकाचौंध रहते हैं और प्रत्येक भक्ति वस्तु की उत्पत्ति पालन तथा सहार के विषय में नाना प्रकार के सिद्धांत तथा कल्पनाएं प्रस्तुत करके भगवान के अस्तित्व को नकारते रहते हैं। एक चिकित्सक मानव के शरीर के भीतर आत्मा के अस्तित्व को नकार सकता है, किंतु मृत शरीर में वो प्राण नहीं फूंक सकता। यदि भी मृत्यु के बाद भी शरीर का सारा तंत्र जैसा का तैसा बना रहता है, मनोवैज्ञानिक मस्तिष्क की बनावट के विषय में गंभीर अध्ययन करता है, उसके लिए मानव मस्तिष्क के लोथड़े की बनावट ही मानसिक क्रिया की मशीन हो, किंतु मृत शरीर के मस्तिष्क को वो क्रियाशील नहीं बना सकता। परमेश्वर से स्वतंत्र मानकर ब्रह्मांड विषय का तो शारीरिक रचना विषय ये वैज्ञानिक अध्ययन केवल बौद्धिक व्यायाम है और अंततः ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ भी नहीं होते। आधुनिक भौतिक सभ्यता के प्रसंग में विज्ञान तथा ज्ञान संबंधी ऐसी सारी प्रगति माया के आच्छादक प्रभाव के अतिरिक्त और कुछ नहीं होती। माया की दो अवस्थाएं हैं, आच्छादक प्रभाव तथा क्षेपक प्रभाव। क्षेपक प्रभाव के कारण माया जीवों को अविद्या के अंधकार में गिरा देती है और आच्छादक प्रभाव से अल्प ज्ञानियों की आंखें बंद कर देती है, जिससे वो परम पुरुष के अस्तित्व के विषय में जिसने ब्रह्मा को प्रकाश दिया अज्ञानी बना रहता है। यहाँ पर परमेश्वर के साथ ब्रह्मा के तादात्म्य का दावा नहीं किया गया है। अतः अल्पज्ञानियों द्वारा ऐसा मूर्खतापूर्ण दावा भगवान की माया का दूसरा प्रदर्शन है। भगवान ने भगवद्गीता में कहा है, ईश्वर के अस्तित्व को न मानने वाले आसुरी लोगों को अविद्या के अंधकार में बारंबार डाला जाता है, जिससे वे भगवान को जाने बिना जन्म जन्मांतर देहांतर करते रहते हैं। किंतु ज्ञानी पुरुष स्वयं भगवान के उपदिष्ट ब्रह्मा जी की शिष्य परंपरा से, जिन्हें भगवान ने स्वयं उपदेश दिया या अर्जुन की शिष्य परंपरा से जिन्हें स्वयं भगवान ने भगवत गीता का उपदेश दिया प्रकाशित होते हैं उसे भगवान का एक कथन मान्य होता है। अहम सर्वश्च प्रभो मत सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ति मां बुद्ध भाव समन्विता। समस्त तेजो तथा जो कुछ भगवान की शक्ति से उत्पन्न हुआ है पालित है तथा और विनाश को प्राप्त होता है उन सब के मूल स्रोत है। जो बुद्धिमान मनुष्य से जान लेता है वही वास्तव में विद्वान है और वही भगवान का शुद्ध भक्त बनकर भगवान की प्रेमा भक्ति में रत होता है। यद्यपि आत्मज्ञानी के समक्ष भगवान की प्रतिबिंब शक्ति अनेक भ्रम उत्पन्न करती है किंतु बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि भगवान अपने विभिन्न शक्तियों के द्वारा हमारी दृष्टि से दूर तक स्थान में रहकर उसी प्रकार कार्य कर सकता है जिस प्रकार दूर स्थान में रखी अग्नि गर्भ दिशा प्रकाश फैलाती है। प्राचीन ऋषियों के औषधि विज्ञान आयुर्वेद में भगवान की श्रेष्ठता को निम्नलिखित निम्नलिखित शब्दों में स्वीकार किया गया है। जगत द्योनेरे निश्चय चिदानंद एक रूपिणा पुंसो श्री प्रकृति नित्या प्रतीक्षाएव भास्वता अचेतनापि चैतन्य योगेन परमात्मना अकरोत् विश्व आलिख्यम अनित्यम नाटकाकृति। इस विश्व का एक जनक है जिसे परम पुरुष कहते हैं और जिसकी शक्ति प्रतिबिंब रूप में चकाचौंध करती हुई प्रकृति के रूप में कार्य करती है। प्रकृति के ऐसे भ्रम पर्ण कार्य से मृत पदार्थ भी भगवान की जीवित शक्ति के सहयोग से गति करने लगते हैं और अज्ञानी नेत्रों को यह भौतिक जगत नाट्य के खेल की तरह प्रतीत होता है। अतः प्रकृति के नाट्य में अज्ञानी पुरुष विज्ञानी अथवा शारीरिक क्रिया विज्ञानी भी हो सकता है किंतु बुद्धिमान पुरुष है। बुद्धिमान पुरुष जानता है कि प्रकृति भगवान की माया है ऐसे निष्कर्ष से जिसकी पुष्टि भगवत गीता द्वारा होती है स्पष्ट है कि जीवात्माएं भी भगवान की ज्येष्ठ शक्ति के प्रदर्शन स्वरूप है। जिस प्रकार भौतिक जगत भगवान की कनिष्ठ शक्ति का प्रदर्शन है भगवान की ज्येष्ठ शक्ति कभी भी भगवान के समान नहीं हो सकती। यद्यपि शक्ति तथा शक्तिमान में थोड़ा ही अंतर है जितना कि अग्नि तथा ताप में। अग्नि में ताप होता है किंतु ताप में अग्नि नहीं है। अल्पज्ञानी समझ में इतनी सामान्य बातें नहीं चलती और वो झूठे अग्नि तथा ताप को एक ही बताता है। अग्नि की 10 शक्ति को सीधे अग्नि में रखकर उसका प्रतिबिंब कहा गया है। अग्नि की शक्ति को सीधे अग्नि में रखकर इसका प्रतिबिंब कहा गया है। अर्थात जीवात्मा के रूप में जीवित शक्ति का प्रदर्शन भगवान न होकर भगवान का प्रतिबिंब होता है। भगवान का प्रतिबिंब होने के कारण जीवात्मा का अस्तित्व भगवान पर आश्रित है जो मूल प्रकाश है। इस भौतिक शक्ति की तुलना अंधकार से की जाती है क्योंकि वो वस्तुतः अंधकार स्वरूप होती है और अंधकार में जीवात्माओं के कार्यकलाप मूल प्रकाश के प्रतिबिंब होते हैं। इस श्लोक के आधार पर भगवान को समझना होगा। भगवान की दोनों शक्तियों की अपराश्रिता को माया या भ्रम कहा गया है। केवल प्रकाश के प्रतिबिंब से अविद्याजन्य अंधकार को दूर करना मुश्किल है। इसी प्रकार सामान्य पुरुष की प्रतिबिंबित प्रकाश से इस भौतिक संसार से बाहर निकल पाना कठिन है जब तक मूल प्रकाश से प्रकाश प्राप्त न हो ले। अंधकार में सूर्य का प्रतिबिंब अंधकार को दूर करने में असमर्थ रहता है किंतु प्रतिबिंब से बाहर सूर्य का प्रकाश अंधकार को दूर कर देता है। यदि कमरे में अंधकार हो तो कोई भी वस्तु नहीं दिखती इसलिए अंधकार में मनुष्य को सांपों तथा भिक्षुओं का भय लगता है भले ही वे वहां पर ना हो किंतु प्रकाश में कमरे की सारी वस्तुएं स्पष्ट दिखते और सांप भिक्षुओं का भय भी तुरंत जाता है। अतः मनुष्य को भगवान के प्रकाश में जैसे भगवद गीता या श्रीमद भागवत की शरण ग्रहण करनी चाहिए किंतु ऐसे प्रतिबिंब रूपी पुरुषों को नहीं जो भगवान के संपर्क में नहीं रहते। किसी भी मनुष्य को भगवत गीता या श्रीमद भागवत का श्रवण ऐसे पुरुष से नहीं करना चाहिए जो भगवान के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करता। ऐसे व्यक्ति का विनाश होना ही है और जो ऐसे पुरुष की संगति करता है उसका भी विनाश होता है। पद्म पुराण के अनुसार भौतिक ब्रह्मांड अनंत है और वे सारे के सारे अंधकार से पूर्ण है। सभी जीव ब्रह्मा अनंत ब्रह्मांडों के असंख्य ब्रह्मा है से लेकर नगण्य चींटियों तक अंधकार में ही उत्पन्न होते हैं और इसके लिए कि वे भगवान को प्रत्यक्ष देख सके भगवान से प्रकाश प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार सूर्य को सूर्य के सीधे प्रकाश द्वारा ही देख पाना संभव है किसी भी दीपक या मनुष्य निर्मित टॉर्च के प्रकाश से सूर्य को नहीं देखा जा सकता भले वो कितना ही शक्तिशाली हो। सूर्य अपने को स्वयं प्रकाशित करता है। अतः भगवान भी विभिन्न शक्तियों के कर्म को अथवा भगवान की आयतु की कृपा द्वारा प्रकट किए गए प्रकाश से ही अनुभव किया जा सकता है। निर्विशेषवादियों का कहना है कि ईश्वर देखा नहीं जा सकता ईश्वर को तो ईश्वर के प्रकाश से ही देखा जा सकता है, मानवीय चिंतन द्वारा नहीं। यहाँ इस प्रकाश को विशेष रूप से विद्या कहा गया है, जो ब्रह्मा के लिए भगवान का आदेश है। भगवान का प्रत्यक्ष आदेश उनके अंतरंग शक्ति का प्राकट्य है, और इसी शक्ति विशेष द्वारा भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि केवल ब्रह्मा को ऐसा अवसर प्राप्त हो, अपितु जिस किसी पर भगवान की कृपा होती है वह अंतरंग शक्ति के द्वारा कल्पना के बिना ही श्री भगवान का साक्षात्कार कर सकता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवां च श्रीरूपां साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतां सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपालां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्ते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण। तो पूर्ववत हम श्रीमद् भागवतम की चर्चा करेंगे। जैसे कि कल हम डिस्कस कर रहे थे कि ये जो श्रीमद् भागवतम है ये एक भक्त के लिए बहुत मूल्यवान ग्रंथ है। प्रभुपाद एक अपने लेटर या एक कोट में कहते हैं कि व्यक्ति को किसी भी ज्ञान की आवश्यकता है तो उसको केवल श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करना चाहिए। केवल श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करने मात्र से सब प्रकार के ज्ञान से जो भक्त है वो सब प्रकार के ज्ञान को जो भक्त है वो जान पाता है। और इसलिए श्री प्रभुपाद ने ये श्रीमद् भागवतम दिया है। और जैसे कि कल हम चतुर्श्लोकी श्रीमद् भागवतम की शुरुआत कर रहे थे, तो वल्लभाचार्य जो पुष्टि मार्गी या फिर रुद्र संप्रदाय के आचार्य हैं उन्होंने भी श्रीमद् भागवतम पर टीका लिखी है। और उस टीका में वो कहते हैं कि वास्तव में जब ब्रह्मा ने भगवान से इन श्लोकों की शुरुआत में प्रश्न पूछे तो उनके प्रश्नों का उत्तर देते हुए ऐसे नहीं कि भगवान ने चार श्लोक बोले, नहीं, भगवान ने कितने श्लोक बोले हैं? सात श्लोक बोले हैं। लेकिन भगवान ब्रह्मा के जो प्रश्न है उनका जो उत्तर है उनका जो सार है वो इन चार श्लोकों में प्राप्त होता है। इसलिए श्रीधर स्वामी चैतन्य महाप्रभु के पास वल्लभाचार्य गए थे। महाप्रभु को कहते कि देखो मैंने अभी ना नया नया एक टीका लिखा है भागवतम के ऊपर और मैंने और नया कुछ प्रकट किया है जो श्रीधर स्वामी से भी बढ़कर है। श्रीधर स्वामी पूर्ववर्ती आचार्य हैं, महान आचार्य जिन्होंने सबसे पहले श्रीमद् भागवतम पर तात्पर्य लिखे, सबसे पहले भागवतम पर टीका जिसे टीका कहते हैं टीका लिखी श्रीधर स्वामी। तो जब अभी वल्लभाचार्य गए और उन्होंने इस घमंडता से महाप्रभु को कहा कि मैंने लिखा है आप सुनिए, मेरे द्वारा सुनिए, चैतन्य महाप्रभु को कहते हैं। महाप्रभु कहते हैं कि मैं तो केवल एक ही आचार्य को जानता हूं, वह है श्रीधर स्वामी। श्रीधर स्वामी ही इसके अधिकृत आचार्य है श्रीमद् भागवतम को प्रस्तुत करने के। श्रीमद् भागवतम की जो सही व्याख्या है वो श्रीधर स्वामी ने की है। हाँ, तो श्रीधर स्वामी को जो नहीं मानता महाप्रभु कहते वो वेश्या के समान है, जो अपने स्वामी को नहीं मानता। उनका नाम क्या था? श्रीधर स्वामी। तो महाप्रभु ने कहा जो स्वामी को नहीं मान रहा है, स्वामी शब्द का दूसरा अर्थ पति भी है ना, मास्टर है, कंट्रोलर है। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा स्वामी को जो नहीं मान रहा है वो एक वेश्या के समान है। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु श्रीधर स्वामी की जो टीका है उसको स्वीकार करते हैं। और प्रभुपाद ने अपने भागवतम के तात्पर्य जो लिखे हैं वो जीव गोस्वामी, श्रीधर स्वामी, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, इन आचार्यों के टीकाओं को सामने लिखकर उन्होंने अपने शब्दों में उन टीकाओं को प्रस्तुत किया है। उन टीकाओं को आप समझ नहीं सकते लेकिन प्रभुपाद ने इतना सरल कर दिया है उन टीकाओं को, क्योंकि भागवतम को समझने के लिए उन टीकाओं को प्रस्तुत किया था आचार्यों ने। तो प्रभुपाद बिल्कुल उस माता की तरह है जिस माता ने अभी अभी नए नए बच्चे को जन्म दिया है। अभी वो बच्चा यदि सोचे कि मैं अभी बिल्कुल थोड़ा आँख खोल रहा हूँ, कुछ रो रहा हूँ, और वो यदि वो सोचे कि मैं जब रोता हूँ तो अपनी माँ को मेरी सेवा में लगाता हूँ, बच्चे को लगता है कि देखो मेरी सेवा में लगी है, मैं कंट्रोल कर रहा हूँ अपनी माँ को, लेकिन वो नहीं जानता कि माँ की तो एक कृपा है उसके ऊपर। तो वैसे ही श्रील प्रभुपाद ने क्या किया, यदि वो बच्चा सोचे कि मेरी माँ तो ये खा रही है, राई दाल सब्जी चपाती पकौड़े खा रही है, मैं भी खाता हूँ, तो वो खाने का प्रयास करेगा, वो बीमार हो जाएगा, लूज मोशन हो जाएगा, नहीं। तो वैसे ही उसके लिए बेटर क्या है, सबसे अच्छा क्या है, माँ वो चीजों को खा रही है और वही चीजें परिवर्तित हो रही है, कन्वर्ट हो रही है माँ के स्तनों के द्वारा दूध के रूप में, और वो दूध का पान करता है, बहुत पौष्टिक है, और वो बालक उस दूध के पान करता रहता है तो और सुदृढ़ बलवान सामर्थ्यवान होता जाता है। तो वैसे प्रभुपाद है, प्रभुपाद ने इन पूर्ववर्ती आचार्यों के टीकाओं को रखा। प्रभुपाद लिखते थे ग्रंथ तो सारे चार पांच बुक सामने होते थे, जीव गोस्वामी, श्रीधर स्वामी, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य, और हर श्लोक के टीकाओं को देखते थे और फिर जैसे पढ़ लेते थे फिर उसको भाष्य के रूप में, तात्पर्य के रूप में लिखते थे। तो उसी प्रकार से प्रभुपाद ने इन टीकाओं को लिया है और उनको चखा है, उनको मंथन किया है और अपने अनुभूति के साथ उन्होंने क्या किया है, ये तात्पर्य हमें दिए हैं। तो प्रभुपाद के तात्पर्य अपने आप में उस श्लोक को एक्सप्लेन करने में काफी है, लेकिन प्रभुपाद और खुश हो जाते थे जब उनके भक्त उनके तात्पर्यों पर चर्चा करते थे। हाँ, प्रभुपाद ने कहा जैसे प्रभुपाद के शिष्य है शिवराम स्वामी, उन्होंने कई मूल्यवान ग्रंथ लिखे, एक बुक लिखा है पर भक्ति वेदांत परपट, भक्ति वेदांत तात्पर्य किताब का नाम है। तो ये प्रभुपाद के तात्पर्यों की महिमा का वर्णन किया है उन्होंने। तो इस प्रकार से प्रभुपाद चाहते थे कि उनके जो भक्त है वो क्या करे, उनके तात्पर्यों का मंथन करें, उनके तात्पर्यों में घुसे, क्योंकि भक्ति वेदांत तात्पर्य में भक्ति छुपी हुई है। क्या है भक्ति वेदांत तात्पर्य में? भक्ति है। आप केवल अनुवाद पढ़ते रहोगे तो अच्छा है लेकिन फिर हमारा इतना कहते ना पल्ले नहीं पड़ेगा। लेकिन प्रभुपाद जब तात्पर्य प्रदान करते हैं तो उन तात्पर्य में क्या है, भक्ति का भक्ति भरी पड़ी है। इसलिए कोई भी व्यक्ति प्रभुपाद के ग्रंथों को पढ़ता है तो कुछ और चीज उसके हृदय में जागृत नहीं होती भगवत भक्ति करने के अलावा। और यदि निरंतर प्रभुपाद के ग्रंथों को पढ़ता रहेगा कोई व्यक्ति विदाउट फेल एवरीडे, अधिक से अधिक जब भी उसको समय मिलता है तो विचलित नहीं हो सकता। हाँ, क्योंकि प्रभुपाद के ग्रंथ हमेशा हमें सही ट्रैक में रखते हैं, इतने पावरफुल है। हाँ, भक्ति के प्रति उत्साहित बनाते हैं, सेवा के लिए, साधना के लिए, आनंदों के बारे में। तो इन सब प्रकार की जो चर्चा है प्रभुपाद के तात्पर्य करते हैं, और सिद्धांत जो गौड़िया संप्रदाय के सिद्धांत है, फिलोसॉफी है, उसका भी वर्णन प्रभुपाद अपने तात्पर्य में बहुत सरलता से प्रस्तुत करते हैं। इसलिए प्रभुपाद को शक्त्यावेश अवतार कहा गया है। मतलब शक्त्यावेश अवतार का मतलब भगवान नहीं, शक्त्यावेश अवतार का मतलब जो छह प्रकार के अवतार है उनमें से एक शक्त्यावेश अवतार। तो शक्त्यावेश अवतार भगवान एक जीव को एक विशेष शक्ति प्रदान करते हैं, और इसलिए वो ऐसा कार्य करता है जिसको कहा जाता है न भूतो न भविष्यति। ऐसा सामर्थ्य ऐसा बल उस भक्त के पास आ जाता है, उस जीव के पास आ जाता है। जीव ऐसा कार्य करता है कि भगवान भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने तो भारत में प्रचार किया, लेकिन प्रभुपाद ने कहा गया पूरे विश्व में, कहां कहां प्रभुपाद दे गए कृष्ण नाम श्रीमद् भागवतम को। तो भगवान जब किसी जीव को अपने शक्ति से आवेशित करते हैं वो शक्त्यावेश होता है, तो विशेष विशेष शक्ति देते हैं। प्रभुपाद को विशेष शक्ति है ग्रंथों का प्रणय, कंपाइल ग्रंथों को जो उन्होंने लिखा है प्रदान किया है, उनके ग्रंथों में उनके वाणी में ऐसा सामर्थ्य था कि शास्त्र जो बहुत कठिन है समझना, हम तो कभी असंभव था हमारे जैसे जो निम्न मंद बुद्धि के कलियुगा के क्षुद्र जीव भागवतम पर चर्चा करे, भागवतम को समझे, भगवद गीता को समझे, चैतन्य चरितामृत, इन ग्रंथों के नाम ही हमारे लिए बड़े कठिन है। लेकिन प्रभुपाद ने इस प्रकार से उसके अंदर के जो सिद्धांत है परम रहस्य है इतना सरल कर दिया कि जो मंद बुद्धि का व्यक्ति भी समझ रहा है, छोटा सा छोटा बच्चा भी बोलता है कृष्ण के बारे में, किसी और संस्था में किसी और संप्रदाय में ये चीज आपको नहीं मिलेगी जो इस बात में है। वहां तो प्रवचन केवल एक ही आचार्य देता है जो गुरु है मठाधीश है, यहाँ तो इस बात में कोई बच्चा जन्म लेता है कि नहीं तो प्रवचन देना शुरू करता है। प्रभुपाद चाहते थे, प्रभुपाद कहते हैं कि हर व्यक्ति प्रचारक है हमारे आंदोलन में। उनके एक शिष्य थे श्याम सुंदर, और उनकी माता उनकी जो पत्नी थी नाम भूल गए मालती, तो उनकी एक बेटी थी, इनको प्रभुपाद ने पहली बार लंदन भेजा था, उनको कुछ पता नहीं था, केवल हरे कृष्ण मंत्र पता था। उस समय प्रभुपाद का पहला स्तर था और कोई बुक्स ही नहीं थी, इतना इस पढ़ के वो भी पढ़ा नहीं होगा, हरे नाम करते थे और गए प्रचार करने एक देश से दूसरे देश, और वहां जाकर इतनी बड़ी सफलता, लंदन में इस्कॉन की उन्होंने स्थापना की। जॉर्ज हैरिसन जो सारे लोग उसकी आवाज सुनने के लिए पागल रहते हैं, उसको इन भक्तों ने भक्त बना दिया, वो सबको प्रभावित किया अपने आचरण और अपने भगवत भक्ति के द्वारा। तो ऐसे है उनकी जो बेटी थी सरस्वती, तो प्रभुपाद और सरस्वती को हमेशा बोलते थे सरस्वती बताओ कृष्ण कौन है, तो कहती है कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। प्रगतिम तुम प्रचारक हो, बेस्ट प्रचारक हो। बेस्ट प्रचारक कौन है, जिसको भगवान की जो पोजीशन है स्थिति है वो पता होनी चाहिए, अपनी पोजीशन पता होनी चाहिए। इसलिए तो भागवतम के जो चतुर्श्लोकी के दो श्लोक है ये संबंध ज्ञान का वर्णन करते हैं। संबंध ज्ञान जैसे हमने कल कहा, मतलब इस बात को स्थापित करते कि कृष्ण कौन है और कृष्ण कौन है, कृष्ण की जो परम स्थिति है उसको भगवान कल के श्लोक में कह रहे थे अहम एव समेव अग्रे, अहम मैं ही सबसे पहले था। मतलब भगवान जीव गोस्वामी कहते हैं अहम, अहम का मतलब केवल अकेले कृष्ण नहीं, वो कहते कि भगवान का जो आध्यात्मिक धाम है वो भी बना रहता है इस जगत का विनाश होने के बाद में, और इस जगत से पहले भी भगवान का धाम है और भगवान अपने नित्य लोक में सदैव निवास करते हैं। तो वास्तव में श्रीमद् भागवतम का सार यही है कि हम जाने कृष्ण की स्थिति और अपनी स्थिति से अवगत हो। तो ये जो चार श्लोक है चतुर्श्लोकी भागवतम, ये क्या है, जैसे कल भी मैं कह रहा था कि इन चारों श्लोकों में चार चीजों का वर्णन किया गया है भगवान कृष्ण के द्वारा अर्जुन को। वास्तव में विष्णु बोल रहे हैं, कौन बोल रहे हैं उनको, चतुर्भुज विष्णु ये चीजें बता रहे हैं। तो वो कहते हैं जो कल का श्लोक था उसमें भगवान बताते हैं, उसमें इस प्रश्न का उत्तर दिया गया है हु इज लॉर्ड कृष्णा, कृष्ण कौन है, परम भगवान कौन है, उनकी स्थिति क्या है, उस चीज की स्थापना चतुर्श्लोकी का जो पहला श्लोक है उसमें की गई है। और आज का जो श्लोक है, आज का श्लोक और वास्तव में कल के श्लोक में भगवत तत्व का वर्णन है, इसलिए कहते ना तत्व तत्वविद के पास जाओ जो तत्व से जानता है भगवान को, तत्वदर्शिना। तो जो कल का श्लोक है उसमें भगवत तत्व का वर्णन है और आज के श्लोक में क्या है, माया तत्व का वर्णन है। तो यहां आज के श्लोक में रियलाइजेशन का वर्णन भगवान करते हैं, भगवान कर बताते हैं श्लोक में कि व्हाट इज माया, माया क्या है, ये दूसरे श्लोक में भगवान बताते हैं। और तीसरा जो कल का श्लोक है आने वाला चतुर्श्लोकी का जो तीसरा श्लोक है जिसमें कहते हैं वो क्या है कि प्रयोजन मतलब गोल क्या है, प्रेम वस्तु क्या है, जीव है तो जीव को क्या प्राप्त करना है अपने जीवन में, तो वो क्या है, भगवान का निश्चल शुद्ध प्रेम को प्राप्त करना है। हमें भगवान को प्राप्त नहीं करना है, हमें किसको प्राप्त करना है, भगवान का जो प्रेम है उस प्रेम में भगवान समाये हुए हैं, भगवान नियत है। और जो चतुर्श्लोकी का आखिरी श्लोक है उसमें तदंग मतलब कैसे ऐसे प्रेम को प्राप्त किया जा सकता है, क्या क्या करें जिसके द्वारा ऐसा भगवान का जो प्रेम है वो हमें प्राप्त हो सकता है। तो पूरा सार भगवान ने पूरा निचोड़ दे दिया है इन श्लोकों में। तो इसलिए भगवान आज के श्लोक में माया का वर्णन करते हैं और जिसमें कहते हैं जो भी सारयुक्त प्रतीत होता है यदि वो मुझसे संबंधित नहीं है तो उसमें कोई वास्तविकता नहीं है, इसी मेरी माया जाना। तो माया क्या है, वैसे देखा जाए तो इस श्लोक में प्रमुख ज्ञान यही है, ज्ञान क्या है कि क्या वास्तविकता है और क्या इल्यूजन है, क्या भ्रम है और क्या वास्तविकता है, इनमें जो अंतर जानता है वो वास्तव में ज्ञानी है, वो एक प्रकार से वास्तविक ज्ञानी व्यक्ति है जो ये दो चीजों को जानता है। भगवान कहते हैं ना सत क्या है और असत वस्तु क्या है, हमारी स्थिति क्या है, हम असत वस्तु को ही सत मान रहे हैं, मतलब जो असत है टेम्पररी को ही शाश्वत मान रहे हैं और ये मानना माया है, इल्यूजन है, भ्रम है। तो इसलिए भगवान कहते हैं अहम सर्वस्व प्रभवो मत्त सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुद्धा भाव समन्विता। वो बुद्धिमान व्यक्ति है मेरे भजन में लगता है या लगेगा जो व्यक्ति ये जानता है कि मैं आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत दोनों का उगम स्थान हूं। तो भगवान से सारी चीजें प्रकट हुई है, तो कोई भी चीज भगवान से अलग नहीं है, चाहे भौतिक जगत है या चाहे आध्यात्मिक जगत है, तो भगवान से कोई चीज अलग नहीं है। भगवान सृष्टि करते हैं, उसका पालन करते हैं, उसका सम्मान या प्रलय आदि करते हैं और ऐसे भगवान परमात्मा रूप में सारे जीवों के हृदय में स्थित है। इसलिए भगवान कहते हैं ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, हे अर्जुन मैं सारे जीवों के हृदय में निवास करता हूं। तो भगवान सब जगह है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि भगवान ने अपना रूप खो दिया। मायावादी कहते हैं जैसे कोई कागज का टुकड़ा है, अभी इसको तोड़ो फाड़ दो टुकड़े टुकड़े कर दो तो इसका अपना ओरिजिनल आकार क्या होगा, खत्म हो जाएगा। तो वैसे ही मायावादी कहते हैं भगवान एको बहुशाम, वेदों के वचन है कि वो एक थे, उन्होंने अपना विस्तार किया बहु अनेकों में, तो कहते अभी उनका अस्तित्व रहा नहीं, लेकिन ईशोपनिषद कहता है ओम पूर्णमिदः पूर्णमदः पूर्णा पूर्णमुदच्यते पूर्णश्च पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। जो पूर्ण है उनसे जितना भी निकालोगे तो वो कितने रहेंगे? पूर्ण रहेंगे। अभी इस संसार में हमारे जेब में 100 रुपए हैं, कोई 50 रुपए निकाल देगा तो 100 बचेंगे क्या? नहीं, 85 ही बचेंगे। लेकिन भगवान की विशेषता है क्योंकि वो पूर्ण है। तो इस प्रकार से भगवान अपना आकार नहीं खोते हैं, अपना स्वरूप नहीं खोते हैं। भगवान अपने शक्ति के द्वारा इस जगत में विद्यमान है। जैसे हम सरकार का प्रमुख व्यक्ति कौन है? पंतप्रधान, जो प्राइम मिनिस्टर है, वो वास्तव में सरकार है। लेकिन ये सरकार, उसकी प्रेजेंस हम महसूस करते पूरे भारत में। कैसे? क्योंकि उसके नियम कानून वो अपने शक्ति के द्वारा वो विस्तारित है। गवर्नमेंट के लोग हैं, पुलिस वाले हैं, नहीं डिफरेंट ऑफिसर्स हैं, तो वो वास्तव में क्या है? उसकी शक्ति है। तो जो प्राइम मिनिस्टर है वो एक जगह है, लेकिन वो सारे स्थानों में फैला हुआ है, वो सारे स्थानों से अवगत है, सब चीजों से अवगत है कि दूसरे स्टेट में क्या हो रहा है, किसी डिस्ट्रिक्ट में वो उसको पता है। क्यों? क्योंकि उनकी उसकी शक्ति है। तो उसी प्रकार से भगवान की भी शक्ति है। तो सूर्य है और सूर्य की किरण, तो सूर्य सब जगह कैसे पहुंचा हुआ है? अपने शक्ति के माध्यम से। उसकी शक्ति है सूर्य किरण। उसी प्रकार से भगवान भी सब जगत में है, और वो कैसे है? अपने शक्ति के द्वारा है। इसलिए शास्त्र कहते हैं पराश शक्ति विविधैव श्रूयते। पराश भगवान की बहुत सारी शक्तियां हैं। स्वभाव की ज्ञान बल क्रिया च, उनमें से 3 शक्तियां प्रमुख हैं, जो उनकी योग माया शक्तियां हैं। तो भगवान की कई शक्तियां हैं, लेकिन उनकी 2 कैटेगरी उनकी शक्तियों की गई है। एक क्या है? योग माया, और दूसरा है महामाया। तो योग का अर्थ क्या है? जोड़ना, जोड़ना। तो योग माया में वो व्यक्ति है जो व्यक्ति इस जगत को भगवान से संबंधित देखता है और भगवान की सारी चीजों पर स्मरण आता है। योमा पश्यति सर्वत्र सर्वत्रं च मयि पश्यति। भगवान कहते जो मुझे सब जगह देखता है उसके लिए मैं कभी ये नहीं हूं, आंखों से ओझल नहीं हूं। तो भगवान को सब जगह देखना मतलब भगवान के शक्ति से भगवान का संबंध दिखाना। जैसे प्रभुपाद मॉर्निंग वॉक में जा रहे थे एक समंदर के किनारे, तो लहरें बहुत जोर से आ रही थी, पत्थरों के चट्टानों पर लग रहे थे। तो प्रभुपाद ने कहा ये आवाज क्या है? तो भक्त लोग कहने लगे प्रभुपाद ये तो आवाज तो वही है। इस चीज की आवाज है? जोर जोर से लहरें आ रही है और ये चट्टानों पर लग रही है। तो ये जल की आवाज है। प्रभुपाद ने कहा नहीं, ये गोपियों की धड़कन की आवाज है। तो इस प्रकार से कोई सोच सकता है? जैसे आप सुन रहे थे ना, जब सूर्य को देखा प्रभुपाद ने तो कहा कि कृष्ण की आंख है। तो इस प्रकार से भगवान के जो भक्त है, प्रभुपाद ने अपना चश्मा रखा एक बार, कहा बताओ ये क्या है? तो युवती कहते प्रभुपाद ने आपका चश्मा है। तो कहते इस प्रकार से चश्मा है, केवल चश्मे को कोई देखता है तो वो माया है, लेकिन इस चश्मे का संबंध किससे देखना है? कृष्ण से, वो योग माया है। केवल इस जगत के वस्तु को देखना, मैटर को देखना, लेकिन उसका संबंध को नहीं देखना, वो है मायामया। और लेकिन उस वस्तु का संबंध कृष्ण से देखना, वो योग माया है। तो योग माया का मतलब ही है कि हर चीज को कृष्ण से देखना। प्रभुपाद कहते चश्मे को आप देखोगे मेरा है, हाँ फिर मेरे बारे में, मेरे कार्यकलाप, तो नेचुरली आप क्या हो? मुझसे कनेक्ट हो। तो उसी प्रकार से इस जगत की हर चीज भगवान से अलग नहीं है। वैसे आचार्यगण कहते कि कोई भी भौतिक वस्तु नहीं है एक प्रकार से देखा जाए, क्योंकि सारे चीजें कृष्ण से उद्भूत है। भगवान कहते आध्यात्मिक जगत भौतिक जगत मुझसे आया है, लेकिन भौतिक कब हो जाता है? जब हम उसको अपने भोग के लिए बनी है इस दृष्टिकोण से देखते हैं तो वो भौतिक हो जाता है, वो माया हो जाती है। जैसे कोई व्यक्ति किसी स्त्री को देखता है तो वो देखता है मेरे भोग की वस्तु है, तो ये माया है। वो देखता है कि कृष्ण की सेविंग का है, हाँ, तो वो माया नहीं है, वो कौन है, योग माया है। तो इस प्रकार से हमारा दृष्टिकोण है। तो प्रभुपाद समझाते हैं कि जिस प्रकार से कोई एक माँ है अपने बच्चे के शूज को देखती है दरवाजे में, बल्कि उसका बच्चा अमेरिका में रह रहा है, लेकिन केवल शूज को देखने मात्र से बच्चे का स्मरण हो आता है और बच्चे के सारे कार्यकलाप, उसका नाम, रोग, गुण, लीला, बच्चे के सब उसके दिमाग में ऐसे प्रकाशित हो जाती है। तो उसी प्रकार से एक भक्त को होना चाहिए कि उसका दृष्टि इस प्रकार से होना चाहिए कि जहां जहां नेत्र पड़े तहां तहां कृष्ण स्फुरे। जो बंसीधर बाबा जी महाराज थे, हाँ, वो जब ट्रेन जाते थे तो उसका पहिया देखते थे, घूम रहा है, गोल गोल घूम रहा है, तो उनको याद आता था गोल ये क्या है, उनको याद आता था ये जगन्नाथ की आंख है, जगन्नाथ की आंख है, भावेश में हो जाते थे। इस प्रकार से जो भक्त है वो सदैव भगवान को देखने का प्रयास करते हैं, और हमें अपने आप को लगाना चाहिए भगवान से संबंधित, हाँ, देखना वस्तुओं को। जैसे भक्त लोग ये एडिडास का एड है तो उसको कैसे देखते, आदिदास, जी मेरा स्वरूप है कृष्ण आदिदास, कृष्ण के दास है हम सब, हाँ, हम पहले कृष्ण के दास है, आदि बाद में सबके दास है। इस प्रकार से भगवान के भक्त कई चीजों को देखते हैं, जैसे एलजी है, एलजी क्या है, लॉर्ड गौरांगा है। इस प्रकार से सारे संसार का भगवान से संबंध देख सकते हो, वस्तु है, व्यक्ति है, स्थान है, हाँ, लेकिन उसके लिए क्या चाहिए, आध्यात्मिक अनुभूति की आवश्यकता है। और यदि हम कृष्ण से संबंधित नहीं देखते हैं, जो कार्य, जो धारणा, जो विचार कृष्ण के संबंध के बिना है वो महामाया है, हाँ। तो इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि भगवान यहाँ माया का वर्णन कर रहे हैं, माया तत्व का वर्णन कर रहे हैं। और वास्तव में जीव के पास स्वतंत्रता है। क्या स्वतंत्रता है, शुरुआत से ही भगवान ने हर जीव को स्वतंत्रता दी है। या तो आप भगवान से संबंधित हो जाओ या भगवान से विलग हो जाओ, हाँ। तो कोई कह सकता है कि भगवान को तो पिता कहा गया है, हाँ, यदि हम कृष्ण की इच्छा के अनुसार कार्य करते तो हम योग माया में हैं, और यदि कृष्ण के विरोध में कार्य करते तो हम महामाया के शरणागत हैं। कोई कह सकता है कि फिर ये दिया क्यों, भगवान को इतना क्या आनंद आ रहा है, ये छुट्टी देकर हमें कितना बड़ा छुट्टी दिया है, कब से आए हम, हाँ, भगवान से छुट्टी लेके आए हैं, हाँ, कौन सा हॉलीडे, समर हॉलीडे तो एंड हो जाता है, ये हॉलीडे एंड ही नहीं हो रहा है, छुट्टी खत्म ही नहीं हो रही है। तो लेकिन भगवान कहते हैं कि मैंने जीव को स्वतंत्रता दी है, और वो स्वतंत्रता क्या है हमारे पास, इच्छा करना, इच्छा की पूर्ति करना स्वतंत्रता नहीं है, केवल इच्छा करना ही स्वतंत्रता है। तो भगवान हमें ये स्वतंत्रता देते हैं, और इस स्वतंत्रता का हम दुरुपयोग करते हैं जब अपनी पहचान इस शरीर के साथ करते हैं, और इस शरीर के तुष्टि के लिए लगे रहते हैं, और फिर बहुत कष्ट उठाते रहता है व्यक्ति। तो कोई कह सकता है कि फिर भगवान ने स्वतंत्रता क्यों दी, यदि कष्ट में डालना था स्वतंत्रता देकर तो नहीं देनी चाहिए। जो पिता है, जो अच्छा पिता है, माता पिता, वो अपने बच्चे के हाथ में है, हाँ, जो चाकू है धार धार, वो क्यों पकड़ा दे, उसको पता है चाकू पकड़ेगा खुद को काटेगा और दूसरों को भी काटेगा, तो चाकू क्यों दे। तो भगवान वास्तव में इसलिए हमें स्वतंत्रता देते हैं क्योंकि इस स्वतंत्रता के द्वारा हम भगवान के साथ प्रेममय सेवा का जो दिव्य आनंद है उसकी अनुभूति कर सकते हैं। और यदि यह स्वतंत्रता नहीं है तो भगवान के साथ उनके सेवा का जो दिव्य आदान प्रदान है उसका आनंद एक्सटेसी हम कभी भी अनुभव नहीं कर सकते। जैसे क्योंकि फिर तो ये हो जाएगा, हम क्या बन जाएंगे, रोबोट्स बन जाएंगे। स्वतंत्रता, जीव की स्वतंत्रता को हटा दो तो जीव एक पत्थर के समान है, एक रोबोट के समान है, वो फिर फूल लेगा बाहर रखेगा, कोई प्रेम में आदान प्रदान नहीं है। जैसे कंप्यूटर है, हाँ कंप्यूटर अपने आप कई चीजें करता रहता है, हाँ वो बोलता रहता है, टाइप करते रहता है, लेकिन इतना कोई आदान प्रदान नहीं है व्यक्ति के साथ। या फिर आजकल जो रोबोट्स बनाए हैं, तो क्योंकि रोबोट्स आदि में क्या नहीं है, फीलिंग नहीं है, हाँ तो इस प्रकार से भगवान ने हमें स्वतंत्रता दी है कि स्वतंत्रता के द्वारा भगवान के साथ हमारा जो मधुर संबंध है उसको हम अनुभव कर सकते हैं। हाँ, यदि हमें भगवान ने आग दी है तो वास्तव में आग देने इसलिए दी है कृष्ण को देखने के लिए दी है, या कान दिया है कृष्ण की महिमा को सुनने के लिए दिया है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, यदि ये कान हम प्रजल्पा सुनने के लिए, भौतिक रूमर्स सुनने के लिए यूज करते हैं, तो इसका अर्थ यह नहीं कि फिर कान को काट के फेंक दो, आप कृष्ण को नहीं देख रहे थे इसको काट के फेंक दो, नहीं, लेकिन उसका हमें क्या करना चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए। तो स्वतंत्रता से कष्ट मिल रहा है, हाँ तो इसका अर्थ यह नहीं है कि स्वतंत्रता को खत्म करो, बल्कि ये सीखो कि कैसे हाँ मुझे उस स्वतंत्रता का इस्तेमाल हाँ करना चाहिए। और वास्तव में माया का मतलब ही है हाँ कि हम कृष्ण को भूलना। माया का क्या अर्थ है, माया का मतलब प्रभुपाद कहते जो है नहीं उसको है मानना, तात्पर्य में कहते ना सर, रात्रि में अंधेरे में आप रस्सी को देखते हो और रस्सी को देखकर आपको सांप महसूस होता है, सांप का भ्रम होता है। तो इस प्रकार से माया का मतलब भी है कि जो है नहीं उसे है मानना, जो नहीं है उसको स्वीकार करना। तो भगवान ये चीज स्वतंत्रता देकर हमें दिव्य आनंद या दिव्य प्रेम का आस्वादन कराना चाहते हैं। तो माया का मतलब दूसरा ये भी है कि जिस क्षण जो चीज जो वस्तु व्यक्ति जो चीज हमें कृष्ण को भुला देती है वो चीज वास्तव में हमारे लिए माया है। चाहे वो हमारे संबंध हो सकते हैं, कोई नजदीकी वस्तु हो सकती है, कोई स्थान हो सकता है। हाँ तो प्रभुपाद कहते हैं कि ये माया के दो विभाजन है, दो एस्पेक्ट है। क्या दो एस्पेक्ट है, एक है प्रेक्षपात्मिका माया और दूसरा है अवरणात्मिका माया। प्रेक्षपात्मिका माया का मतलब है कि जैसे ही जीव कोई भौतिक भोग करने की इच्छा करता है, भगवान उसको खींच के ऐसे स्थान वातावरण में डालते हैं कि जहां उसके लिए उचित स्थान हो उस इच्छा की पूर्ति करने के लिए, और उस स्थान में डाल देने के बाद भगवान की ये जो माया है उसको ढक देती है, कवरिंग कर देती है। इसलिए पहली माया क्या है, वो क्या करती है, थ्रोइंग मींस फेंकती है ये जगत में। और दूसरा क्या है माया का प्रकार, जो आवरणात्मिका, फेंकने के बाद उसको आवरण डालती है, बेटा यही पड़े रहो। जैसे इंद्र को जब शाप मिला तो क्या बने, सुवर, हम बार बार सुनते हैं। तो इसके लिए इंद्र का परफेक्ट उदाहरण है, इंद्र जब सुवर बने, सुवर उनको डाला गया, पहले तो फेंका, सिंहासन से उठाकर पीक के शरीर में फेंक दिया, प्रेक्षपात्मिका माया। और दूसरी स्थिति क्या हुई, जब ब्रह्मा जी बहुत समय बीता, ब्रह्मा जी सोचने लगे कि अभी चलो पापा चलो, इंद्रपद रिक्त हो गया है, खाली है, तो इंद्र कहते नहीं नहीं वहां नहीं जाऊंगा, यह इतना अच्छा लग रहा है। जैसे प्रभुपाद ने इसके ऊपर एक दो लेक्चर दिया है, प्रभुपाद दे रहे इवन सुअर भी अपना मल खाने की प्रवृत्ति छोड़ता नहीं, कहते यही इतने संतुष्ट हो। ऐसे कई लोग बोलते हैं हम तो संतुष्ट हैं अपने स्थान में, इतनी बुरी स्थिति में उनका जीवन होता है, फिर भी वो कहते कि ये स्थिति हमारे लिए उचित है। वो स्थिति से बाहर नहीं आना चाहते, कीचड़ से बाहर नहीं आना चाहते। तो वैसे ही इंद्र की स्थिति है, इंद्र सुवर के शरीर में है, लेकिन फिर भी ब्रह्मा जब गए चलो, वो कहते नहीं यही बेस्ट है, वो इंद्र पद में क्या है, यहाँ इतने मल खाने को मिल रहा है गरम गरम ठंड के दिनों में, और जहां मर्जी घुमा, इतने सारे चिल्ड्रन फैक्ट्री है मेरे पास, पत्नी है, मिस पिग है, मस्ती कर रहा था और बोलते जा रहा था, वहां होगा सुंदर पत्नी होगी, सुंदर बच्चे होंगे, इतना अच्छा फूड होगा, ये सब बोलते जा रहा था, वो उसे भी संतुष्ट था। तो प्रभुपाद कहते इस प्रकार से ये जो माया है वो क्या करती है, आवृत्त कर देती है। हर व्यक्ति इतना पागल हो जाता है उस भौतिक भोग को प्राप्त करने के लिए कि उसको कुछ और सोचने नहीं, कुछ और सोच नहीं सकता। जैसे श्रीमद् भागवतम में राजा ययाति का उदाहरण आता है। ययाति इसलिए भगवान कहते मूढ़ नामी जानाति, ऐसे मूढ़ व्यक्ति नहीं जान सकते। तो माया के द्वारा हमें ढका जाता है और माया के द्वारा हम इस भौतिक जगत को में ही संतुष्ट होकर रहना चाहते हैं, अपनी स्थिति से बाहर नहीं आना चाहते। जैसे हम रजे ठंड में रजे से बाहर नहीं आना चाहते, रजे से बाहर आएंगे तो मंदिर पहुंचोगे, मंगल आरती आरती करोगे, भक्तों का संग करोगे। लेकिन हम कहते यही ठीक है, माया कहते यही उचित है, तुम इधर ही बैठे रहो, पड़े रहो। तो ययाति, हाँ ययाति को इतना, इतने वो आसक्त हो गए थे भौतिक भोगों के प्रति। श्रीमद् भागवतम में राजा ययाति का उदाहरण आता है। तो राजा ययाति की जो एक राजकुमारी थे जिनका नाम था शर्मिष्ठा, और दूसरे थे शुक्राचार्य की जो पुत्री थी देवयानी। तो ये जो ययाति हैं वो देवयानी से बहुत आसक्त हो गए, शुक्राचार्य की जो पुत्री है, और दिन रात उनके संग में रहा और लंबे समय तक भौतिक सुखों को भोग करने लगा उसके संग में। और इतना ही नहीं, उसके साथ जब विवाह भी हुआ था तो जो राजा की पुत्री थी शर्मिष्ठा उससे भी संबंध रखने लगा, इतना आसक्त हो गया। और जब पता चला देवयानी को कि ये जो मेरा पति है ययाति, ये शर्मिष्ठा से भी पुत्र उत्पन्न कर रहा है, बहुत गुस्सा आ गया। उन्होंने अपने पिता को जाकर बोला, पिता को जाकर बोला तो हाँ, पिता जो शुक्राचार्य थे आश्रम के जो गुरु हैं, तो बहुत क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा तुम्हारा जो अंडकोश है, या फिर तुम बूढ़े हो जाओ, तुम्हारे अंदर सामर्थ्य नहीं रहे इस यौन सुख का उपभोग करने के लिए। अभी इतना माया से भग्न हो गया था, इतना आसक्त हो गया था भौतिक प्रकृति के द्वारा, बहुत अधिक ढक गया था। तो इस आसक्ति को, इस चीज की पूर्ति करने के लिए क्या क्या नहीं कर रहा था। वो शुक्राचार्य से प्रार्थना कर रहा है, चरणों में निवेदन कर रहा है। अभी बुढ़ापा, उन्होंने श्राप दिया तो बुढ़ापा आ गया, और उन्होंने कहा मुझे क्या करूं, कैसे इस बुढ़ापे से मैं अलग हो जाऊं, युवा अवस्था प्राप्त करूं जिसके द्वारा मैं और इस भौतिक जगत का सुखों को भोग कर सकता हूं। तो उन्होंने कहा तो क्या करो, आपके जो पुत्र है उनसे यौवन मांगो, एक्सचेंज करो हाँ आपने जो आयु है। तो फिर वो जाते अपने अलग अलग पुत्रों के पास, कहते कि हे पुत्र, अभी पिता अपने बेटों से क्या मांग रहा है, जवानी मांग रहा है कि आप मेरा बुढ़ापा ले लो और आपकी युवा अवस्था मुझे दो, ताकि मैं और उपभोग करना चाहता हूं। तो इस प्रकार से माया जो अवरणात्मिका शक्ति है वो कवर कर देती है, और इस कवरिंग के अंडर व्यक्ति क्या क्या नहीं करता उसको उपभोग करने के लिए। उसने यही कोजी कोजी सिचुएशन है, ठीक है यहाँ। तो फिर ययाति ने अपने पुत्रों से याचना की, एक पुत्र ने कहा कि नहीं नहीं कैसे संभव है, अभी अभी तो मेरा जीवन शुरू हो गया है, और ये जीवन भगवत साक्षात्कार के लिए मिला है, और आप क्या करोगे, इसका दुरुपयोग कर रहे हो, मैं नहीं देने वाला। तो उन्होंने उनको श्राप दिया। तो फिर अपने पुत्र थे पुरुष है उनसे उन्होंने एक्सचेंज किया, और फिर हजारों साल बुढ़ापा उनको दे दिया, उनकी जवानी दे दी, और हजारों साल देवयानी के साथ संग में लिप्त हो गए। फिर उनको ये आया रियलाइजेशन, अनुभूति प्राप्त हुई। उन्होंने अपनी पत्नी को देवयानी पे एक दिन बिठाया और कहा कि मैं आपको एक स्टोरी बताता हूं। उन्होंने कहा एक था बकरा और एक थी बकरी, इनका स्टोरी उन्होंने सुनाना शुरू किया। फिर किस प्रकार से आसक्ति और भगवत दैवी या जो महामाया का प्रभाव है, इन सब चीजों की उन्होंने विवेचना की श्रीमद् भागवतम में। और फिर उन्होंने कहा कि वास्तव में ये जो भौतिक माया है उसके प्रभाव के कारण व्यक्ति इस जगत को जो वास्तव में सत्य नहीं है असत है उसको सत मान के बैठता है और जो असत सुख है उसको सत सुख मान के बैठता है। असत तेरा सत्य करे माने निताई पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल जे छाया ये जगत जुड़ा है हेरो निताय बिने भाई राधा कृष्ण पाए देनाय। तो नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि नित्यानंद प्रभु के चरणों का आश्रय ग्रहण नहीं कर रहा है व्यक्ति भगवान के भजन में नहीं लगा है जिसके द्वारा वो असत चीज को सत मान के बैठा है असत सुख को सत सुख मान के बैठा है और उसी की पूर्ति के लिए लगा है। तो वो कहते हैं कि इस जगत का जो व्यक्ति है जो भौतिक माया के द्वारा बहुत अधिक प्रभावित है तो उसकी जो ये तृष्णा है भोग करने की व्यक्ति बूढ़ा भी हो जाए तभी भी भोग करने की तृष्णा है वो बूढ़ी नहीं होती है। तो उन्होंने कहा जिर्यंति जिर्यता केशा दंता जिर्यंति जिर्यता धनाशा जीविता आशा जिर्यतोपि न जिर्यते। तो वो कहते हैं देवयानी को कहते हैं कि जिर्यंते जिर्यता केशा कि केश गलने लगे हैं गल जाते हैं और दांत भी खत्म हो जाते हैं लेकिन फिर भी व्यक्ति के पास ये दो आशा है इस टेम्पररी अशाश्वत जगत में। ये क्या है धन प्राप्ति की आशा। धन का मतलब ये धन क्यों उपभोग करना है धर्म अर्थ अर्थ क्यों काम के लिए। तो कहते कि धनाशा और जीवित आशा इस जगत में जीवित रहने की आशा ये कभी जाती नहीं है हमेशा बनी रहती है व्यक्ति के जगत इस जीवन में। क्यों क्योंकि उसने भगवान के चरणों का आश्रय स्वीकार नहीं किया है उसने योग माया का आश्रय स्वीकार नहीं किया है उसने क्या किया है महामाया का आश्रय को उसने स्वीकार किया है। तो वास्तव में भगवान इस श्लोक में यही बताना चाहते हैं कि जो मैं जो मेरी माया है इसको पार करना बहुत अधिक दुर्लभ्य है। मम माया दुरतया मामे वे प्रपद्यन्ते माया वेदं तरन्ति। लेकिन बहुत सरल उपाय है मेरी माया को पार करने के लिए मेरे चरण कमलों का आश्रय स्वीकार करना मेरे चरण कमलों के शरण को स्वीकार करना। जब कोई व्यक्ति भगवान के चरणों की शरण को स्वीकार करता है तो भगवान कहते हैं बहुत सरलता से वो व्यक्ति मेरी ये जो दुर्लभ्य माया है उसको पार कर पाता है। तो माया क्या करती है हमें कृष्ण का विस्मरण कराती है और लेकिन जब हम योग माया के आश्रित होते हैं तो हमें कृष्ण का स्मरण होता है। तो बहुत सारे प्रश्न हैं शास्त्रों में लेकिन सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है एक साधक एक भक्त के लिए है कि मैं कृष्ण का स्मरण कैसे करूं कैसे कृष्ण का मैं सतत स्मरण करूं। जितने भी आचार्य गण हैं जितने भी हम प्रार्थना पढ़ते हैं वो और चीज की कामना नहीं करते हैं भगवत चरणों में। हम भक्तिरो ठाकुर नरोत्तम दास ठाकुर राजा कुलशेखर आदि वो एक ही कामना करते हैं कि हे कृष्ण हमें इस भौतिक जगत का भय नहीं है। हम देखते कि कई सारे जीव हैं कई लोग इस भय से भक्ति कर रहे हैं कि जन्म मृत्यु के ये जो कष्ट में स्थिति है विपदा में स्थिति है उससे मुक्त होना है। कहते मुझे उसका भय नहीं है मुझे बारंबार इस संसार में जन्म लेना भी पड़े तो लेकिन हे कृष्ण मुझे ब्रह्मा का पद नहीं चाहिए जो आपको भूल के ब्रह्मा इंद्र चंद्र आदि के पद की मुझे आशा नहीं है जिससे आपका विस्मरण हो मुझे तो ऐसा जन्म दो चाहे संसार में बारंबार किसी भी योनि में लेकिन सतत आपका मुझे स्मरण होना चाहिए। इसलिए तो महाप्रभु कहते मम जन्मणि जन्मनिश्वरे भवतात् भक्तिर् अहेतुकित्वे। महाप्रभु जन्म लेने के लिए तैयार है कहते कि हाँ मम जन्मणि जन्मणि जन्म लेने पड़े लेकिन मेरे हृदय में क्या होना चाहिए, आपके प्रति और उचलित या शुद्ध जो भक्ति है, अहेतु की भक्ति, चरण तुमार, आपके चरणों के प्रति जो अहेतु की भक्ति है वो होनी चाहिए। हाँ, तो इस प्रकार की भावना हम भक्त के हृदय में होती है। एक भक्त के लिए सबसे बड़ा लॉस यही है, कृष्ण का विस्मरण होना, और सबसे बड़ा लाभ क्या है, कृष्ण का अधिक से अधिक स्मरण। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु इस कलयुग में सबको सबसे बड़ा लाभ प्रदान करने के लिए आए हैं। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर ने कहा, गोलो के रथ प्रेम धना हरि नाम संकीर्तन। चैतन्य महाप्रभु आए हैं एक दवाई लेकर, हाँ, कृष्ण का बहुत सरलता से अपने जीवन में स्मरण को बढ़ाना है तो व्यक्ति को भगवत नाम को गंभीरता से लेना होगा। जो व्यक्ति भगवान का जो हरि नाम है, हाँ, उसको गंभीरता से उच्चारण करता है सुबह के समय में, तो उसकी जो चेतना है पूरे दिन के लिए कृष्ण स्मरण से भर जाती है। जैसे लोग अपना सीएनजी भरने के लिए जाते हैं, हाँ, एक बार सीएनजी गैस फुल हो गए टंकी, तो पूरे दिन हमारे पास जाते हैं मैराथन में बुक डिस्ट्रीब्यूशन। फिर जब दूसरे दिन याद आता है कि अरे सीएनजी खत्म है, जब ये लोग फुल लाने जाते हैं, तो वैसे ही है सुबह के समय में हम फुल करें अपने जो टंकी है कृष्ण नाम के द्वारा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और यही वास्तव में सबसे सरल विधि है। और व्यासदेव भी इसी विधि की गुणगान करते हैं। एक बार सारे ऋषि मुनि एकत्रित हुए थे और उन्होंने सोचा कि कलयुग में कृष्ण का स्मरण करना सर्वोत्तम उपाय क्या है, क्या करने से कलयुग में सरलता से भगवत प्राप्ति हो सकती है। सारे वर्ल्ड के ऋषि मुनि एकत्रित हो गए, हाँ, और वो गए, कहते इसका उत्तर एक ही भक्त को पता होगा, वो है व्यासदेव। व्यासदेव के पास गए तो दूर से व्यासदेव जल में स्नान कर रहे थे और व्यासदेव चिल्लाए जा रहे थे, कलयुग ही सर्वश्रेष्ठ है और शूद्र ही सर्वश्रेष्ठ है, कलयुग ही धन्य है, शूद्र ही श्रेष्ठ है। अब ये सुनकर जो बहुत सारे ऋषि मुनि अचंभित हो गए, व्यासदेव कल तो ठीक थे, अभी क्या हो गया, उनको सुबह सुबह स्नान कर रहे हैं, वो पानी दे रहे हैं और वो लगा रहे कलयुग धन्य है, शूद्र श्रेष्ठ है। तो फिर गए, कस्मिन काले अल्प धर्म को, कौन से काल में थोड़ा धर्म करने से महत प्राप्ति हो सकती है, भगवत प्राप्ति हो सकती है। तो उन्होंने फिर कहा बताओ, हम तो इसमें है चिंता में है, और ये सुन के तो और चिंता हमारी बढ़ गई। आप तो कलयुग श्रेष्ठ कह रहे हो, शूद्र श्रेष्ठ कह रहे हो, और आप खुद ही महाभारत में कहते हो कि कलो शूद्र संभव, कलयुग में सारे शूद्र हैं, तो कलयुग के लोग क्या सबसे श्रेष्ठ है। उन्होंने कहा हाँ, क्यों, क्योंकि वो कहते हैं कि जो त्रेता युग आदि है उसमें जो लाभ है, आध्यात्मिक लाभ आपको प्राप्त होता है जब आप एक साल या 10 साल आप ये करते हो, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हो, या फिर त्रेता युग में वही लाभ आपको प्राप्त होता है एक प्रकार से, जब आप 1 साल करते हो, द्वापर युग में 1 महीने, और कलयुग में ही अवरात्रि ना, तो कहते 1 दिन या 1 रात कलयुग में काफी है कृष्ण प्राप्ति करने के लिए। हाँ, लेकिन व्यक्ति को क्या होना चाहिए, उतना गंभीर होना चाहिए। हाँ, प्रभुपाद ने कहा 1 लाइफटाइम इनफ है कृष्ण के पास वापस जाने के लिए, लेकिन उसके लिए दृढ़ता की आवश्यकता है, और दृढ़ता हमारे अंदर आती है जब हम भक्तों का संग उचित रूप से करते हैं। हाँ, तो दृढ़ हो जाते हैं हम अपने आध्यात्मिक जीवन में। तो कलयुग में सारे शास्त्र भगवत नाम की महिमा का हम वर्णन करते हैं, और भगवान का स्मरण बढ़ाने के लिए ये सर्वोच्च और सर्वोत्कृष्ट और सरल साधन है कृष्ण नाम। हरे नाम हरे नाम हरे नामैव केवलं कलो नास्तेव 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 गतिरन्यतः। इन चीज को बार बार हम सुनते हैं लेकिन फिर भी इसको स्वीकार नहीं करते। इसलिए कहते हैं दुर्दैव में दृश्य जनी ना अनुराग, कि मैं बहुत अधिक दुर्भाग्यशाली हूं कि हे कृष्ण आपने आपके नामों में सारी शक्ति समाहित कर दी है, लेकिन ऐसे आपके दिव्य नामों के प्रति मेरा थोड़ा भी अनुराग नहीं है। चैतन्य महाप्रभु की उक्ति है, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं। तो इस प्रकार से इस श्लोक का सार यही है कि जो चतुर्थ श्लोकी है इन चार श्लोकों में अलग अलग तत्व का वर्णन भगवान करते हैं। पहले चतुर्श्लोकी में भगवत तत्व का वर्णन करते हैं और आज का जो श्लोक है उसमें माया तत्व का वर्णन कर रहे हैं भगवान, कि माया क्या है। भगवान से संबंधित चीजों को न देखना है माया है, या भगवान की सेवा को भूलना है माया है, भगवान का विस्मरण होना है एक प्रकार से माया है। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद जो ग्रंथ है, भक्तों का संग है, श्रवण कीर्तन है, इन चीजों को हम गंभीरता से लेंगे तो क्या होगा, हम कृष्ण को गंभीरता से ले रहे हैं, जिसके द्वारा हम कृष्ण का स्मरण अपने जीवन में अधिक से अधिक बढ़ा सकते हैं। हरे कृष्ण। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की पतित पावन श्रील